सुर्खियों में
नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य शुक्ला और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है मजबूत ऊर्जा आपूर्ति के लिए सरकार के कदम। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर। शेखर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
नमस्कार आदित्य जी, नमस्कार।
पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात ने पूरे विश्व में ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। एशिया और खासकर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लिए ये समय और भी कठिन है क्योंकि इनमें से अधिकतर देश अपनी ऊर्जा आपूर्ति के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर करते हैं। लेकिन इस सबके बीच भारत ने अब तक इस संकट का मजबूती से सामना किया है और पश्चिम एशिया में संघर्ष को शुरू हुए लगभग एक महीने बाद भी हमारे देश में तेल और गैस की पर्याप्त निर्बाध आपूर्ति जारी है। साथ ही पिछले 24 घंटे में सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जो देश में ऊर्जा आपूर्ति को और बेहतर करेंगे। इन सब पर हम शेखर जी से एक एक कर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और घरों तथा उद्योगों को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार ने कई अहम कदमों की घोषणा की है। वैश्विक स्तर पर बढ़ती ईंधन कीमतों से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में उल्लेखनीय कटौती की है। सरकार ने लगभग 2 महीने की खपत के बराबर कच्चे तेल का भंडारण भी सुरक्षित कर लिया है। साथ ही आयात स्रोतों से विविधता लाकर किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम की गई है, जिससे भू राजनीतिक जोखिमों से सुरक्षा मिल सके। संभावित आपूर्ति बाधाओं से निपटने के लिए सामरिक पेट्रोलियम भंडार को भी मजबूत किया जा रहा है। रसोई गैस की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र ने राज्यों के लिए एलपीजी आवंटन में 20% की वृद्धि की है। घरेलू एलपीजी उत्पादन में 40% से अधिक की बढ़ोतरी की गई है और सभी रिफाइनरियां अपनी अधिकतम क्षमता पर काम कर रही हैं। सरकार ने देश भर में प्राकृतिक गैस अवसंरचना के विस्तार को भी तेज कर दिया है। पाइपलाइन परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी दी जा रही है जिससे पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी की पहुंच बढ़ सके। औद्योगिक ऊर्जा खपत को संतुलित करने के लिए उद्योगों को ईंधन के कुशल उपयोग और बिजली आधारित विकल्पों को अपनाने की सलाह दी गई है। निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करते हुए ऊर्जा से जुड़े आंकड़ों को राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय घोषित किया गया है। तेल और गैस कंपनियों को अब उत्पादन, आयात और भंडारण से संबंधित जानकारी रियल टाइम में उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा राज्यों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
शेखर जी, क्या कदम सरकार ने उठाए हैं अब तक? और एक बहुत बड़ा फैसला सरकार ने किया कि लोगों के, खास करके जो उपभोक्ता हैं, उन तक बोझ ना पहुंचे पेट्रोल और डीजल की कीमतों का। इसके लिए पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती कर दी गई है। साथ ही घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डीजल और विमानन टर्बाइन ईंधन पर निर्यात शुल्क लगाया गया है। हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी टिप्पणी है इस पर।
आदित्य जी, इसका पहले हमें समझने के लिए, जब युद्ध शुरू हुआ था तब जो विश्व में जो पेट्रोल, ये जो कच्चा तेल का जो रेट था $70 पर बैरल था, आज के तारीख में $122 पर बैरल हो चुका है।
बिल्कुल,
यानी 75% बढ़ी है। इसका मतलब जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, हमारे इंडियन ऑयल हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो या भारत पेट्रोलियम हो, ये जो आयात करते हैं उन पर बोझ भी बढ़ गया है। लेकिन सरकार के एक प्रकार से निर्देश है, ये बोझ आदमी तक पहुंचना नहीं चाहिए, इसको कंपनीज ही ऑब्जर्व करना है। लेकिन कंपनी को भी एक लेवल पर वो स्वयं इसको बर्डन को ले नहीं पाएंगे। इसलिए सरकार ने यह तय किया, आज बहुत बड़ा फैसला है, जो एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल पे उस पर 10% कटौती हुई है। इसका मतलब केवल 3% होगा और डीजल में ना का बराबर हो गया, क्योंकि 10 रुपया पहले था वो 10 रुपया हट गया है। इससे इसका मतलब ये है, जब विश्व भर में तेल का रेट बढ़ रहा है, देख लीजिए, मतलब आप देखे 30% से 50% बढ़ गया है दक्षिण एशिया में, भारत छोड़ के बाकी देशों में, आपके पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, आसपास पड़ोस देशों में, श्रीलंका में भी, और यहाँ इस साइड आप देखेंगे उत्तर अमेरिका में भी, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के भी, वहां भी कितने बढ़े हैं, 30% बढ़े हैं तेल के दाम, और यूरोप में 20% बढ़े हैं। इसके बावजूद भारत में सरकार ने हमारे पेट्रोल पंप पे दाम नहीं बढ़ाया। इसीलिए सरकार ने तय कर लिया है कि सारा जो बोझ हो रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और हमारी कंपनीज को, भारत की सरकारी कंपनीज को इसको बैर करना पड़ रहा है, इसको स्वयं ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा बोझ है जो बोझ को ये कर रहे हैं। इसके अलावा आदित्य जी दूसरा कदम लिया है, हमारे कई जो प्राइवेट कंपनीज है बाहर से कच्चा तेल मंगा के उसके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बना के फिर बाहर बेचते एक्सपोर्ट करते हैं, उन पर एक एक्सपोर्ट लेवी लग गई है ताकि इस समय बाहर से वो कच्चा तेल मंगा के या प्रोडक्ट्स फिर वापस एक्सपोर्ट इस वक्त ना करें, क्योंकि यहाँ अंदर बहुत जरूरी है। सारे रिफाइनरीज को ये निर्देश है कि अपना आउटपुट जितना भी है वो केवल जो घरेलू डोमेस्टिक डिमांड है उसको ही ये करना है, मीट करना है। ये अपने आप पे एक बहुत बड़ा फैसला है। और ये जो सरकार की जो फैसला है जिसके अन्य तरीके से कभी इसमें तो क्या फर्क हुआ, लोगों को पैसा नहीं पहुंचा, पहुंचाने की बात नहीं है। अगर वो जो रेट बढ़ा है 75% जो बढ़ी है इंटरनेशनल प्राइसेस, उसको पूरा अगर हम हमारे आम जनता को दे दें, आप सोच सकते हैं कि कैसे इन्फ्लेशन हो जाएगा, हर चीज का मूल्य बढ़ जाएगा। ऐसे सरकार ने नहीं किया है, सरकार ने बड़ा संवेदनशील मामले को अपने हाथ में लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। आदित्य जी,
जी बिल्कुल, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी संसद में जब अपना वक्तव्य दिया था पिछले सप्ताह, तो उन्होंने भी कहा था कि ये कठिन समय है और हम सभी भारतीयों को इस समय बहुत समझदारी से एकजुट होकर इसका सामना करना है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने साफ किया कि सरकार ये बिल्कुल सुनिश्चित कर रही है कि पेट्रोल डीजल और हवाई जहाजों के ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी ना हो। नई दिल्ली में संवाददाताओं से इस बारे में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
देखिए, पहले विषय, जब भी ऐसे दुनिया में संकट आता है और उसका प्रभाव भारत के ऊपर पड़ेगा, इससे पहले कोविड हो या अब हो, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, जिससे जनता के ऊपर बोझ ना लगे और जनता के ऊपर ये कष्ट भी ना हो, किल्लत ना हो पेट्रोल और डीजल का और एलपीजी का। इस कारण अभी क्योंकि विदेश में मार्केट में दाम बढ़ रही है क्रूड का, उसके कारण पेट्रोल और डीजल का, एटीएफ का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चाहा कि कंज्यूमर का प्राइस बढ़ना नहीं है। उसके कारण हम निर्णय लिए हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट दें और जिससे वो ज्यादा दाम में खरीदने वाली चीजों को सरकार उनको मदद करेगी, मगर जनता के ऊपर रेट बढ़ाना नहीं होना चाहिए।
शेखर जी, यहाँ वित्त मंत्री भी साफ कह रही हैं कि सरकार पूरी तरह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी तरह का जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उनमें बढ़ोतरी ना हो, और जो आपने भी बात कही कि इन बढ़ी हुई क्रूड ऑयल की कीमतों का असर लोगों के दिनचर्या पर ना पड़े।
सरकार जानती है कि पश्चिम एशिया में जो हालत बनी है, भारत की यही उम्मीद है अपनी तरफ से भी, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी कोशिश हो रही है कि किसी तरह युद्ध पे एक विराम हो जाए, क्योंकि ये आर्थिक विश्व भर में आर्थिक स्थितियों पर काफी असर पड़ रहा है। तीन पहलू में अगर देखा जाए वो कर रहे हैं। एक, हमको लगातार एनर्जी मिलनी चाहिए, तो अन्य सोर्सेस को टैप कर रहे हैं, वो एलपीजी हो, कच्चा तेल हो, पीएनजी हो, कई जगह से टैप कर रहे हैं। इतना तक आप देख रहे हैं कि 20,000 किलोमीटर अर्जेंटीना से भी मंगवा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह हो रहा है, अमेरिका से भी आ रहा है, क्योंकि हमारे लिए एलपीजी और पीएनजी बहुत आवश्यक घरेलू डोमेस्टिक कुकिंग फ्यूल है। तो सरकार बहुत कदम कर रही है और इसीलिए सरकार बार बार ये चेतावनी दे रही है कि लोगों को अफवाहें पर विश्वास नहीं करना चाहिए, सर्कुलेट नहीं करना चाहिए।
सरकार अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता के जरिए हर रोज लोगों तक सही जानकारी भी पहुंचा रही है। आज इस प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और देश ने अगले 2 महीने का तेल का स्टॉक सुरक्षित कर लिया है, आइए उन्हें सुनते हैं।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वी आर स्टिल इन द वॉर सिचुएशन, भारत सरकार ने कई स्तर पर कई इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए इस सिचुएशन को बहुत इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए। आज की तारीख में वी हैव सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज और अगले 2 महीने के लिए सप्लाईज हैव बीन लाइंड अप। सिचुएशन इज कंफर्टेबल विद रिस्पेक्ट टू एलपीजी एंड पीएनजी आल्सो। हमारी रिफाइनरीज 100% या उससे भी ज्यादा कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एलपीजी हैज इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 40%।
शिखर जी, जैसा सुजाता शर्मा जी ने भी बताया कि एक और अहम फैसले में सरकार ने राज्यों के लिए कॉमर्शियल एलपीजी आवंटन को बढ़ाकर अब 70% कर दिया है। हम आपसे जानना चाहेंगे, जहां दुनिया के अन्य देश स्कूल कार्यालय बंद करने और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी करने जैसे उपाय करके इस संकट का सामना कर रहे हैं, वहीं भारत अपनी ऊर्जा खपत में बिना कोई कटौती किए इस संकट से निपटने की नई तरकीबें ढूंढ रहा है, चाहे सौर ऊर्जा हो या फिर अब पीएनजी नेटवर्क के विस्तार की बात। शिखर जी, क्यों बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपनी ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, जैसा प्रधानमंत्री ने भी अभी संसद में कहा था।
पश्चिम एशिया में जो स्थिति बनी है, एक बात हमें बताता है कि किसी एक सोर्स पे अगर आप डिपेंड करोगे तो आपके सामने क्राइसिस आएगा, लेकिन हर क्राइसिस आपके लिए एक अवसर है सीखने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए। ठीक है, लगातार सरकार ने, क्योंकि पाइप गैस की इतनी समस्या नहीं है जितना एलपीजी सिलेंडर को लेकर है, इसीलिए सरकार इसको प्रमोट कर रही है राज्य सरकार के साथ, क्योंकि वो सस्ता भी है और सेफ भी है। और आज के तारीख पे आप देखेंगे भारत अभी प्रोड्यूस कर रहा है, स्वयं प्रोड्यूस कर रहा है 92 MMSCMD, ये इनका फिगर है, नेचुरल गैस भारत के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा है, अपने रिफाइनरी से आ रहा है
जी।
तो इसीलिए अगर आप देखेंगे भारत में रिक्वायरमेंट 191 का है, लेकिन हम अभी 92 प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी अगर आप देखेंगे आसपास 50% जो रिक्वायरमेंट हम भारत में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं
जी।
और भी हम परे करेंगे इसीलिए। और जो शहरी इलाके में आप देखेंगे, कई जगह पर आप देखेंगे पीएनजी चल रहा है। तो ये बात नहीं है कि भाई सरकार इसीलिए पीएनजी पुश कर रहा है क्योंकि हमारे पास एलपीजी खत्म हो रहा है, एलपीजी खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें हर समय विकल्प ढूंढना चाहिए, उसका प्रयत्न करना चाहिए और लोगों को भी, नागरिकों को भी सोचना चाहिए कि किस तरह वो भी एक अल्टरनेटिव सोर्स जाए ताकि क्राइसिस ना हो।
बिल्कुल शेखर जी, जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो उससे पहले हमने देखा था कि क्या हालात थे और हमारी कूटनीति किस दिशा में आगे बढ़ी है। इसका एक उदाहरण इसी से समझा जा सकता है कि आज हम ईरान और रूस दोनों से तेल खरीद रहे हैं, जबकि संघर्ष शुरू होने से पहले की स्थिति बिल्कुल इससे उलट थी। हमारी कूटनीतिक कोशिशों पर सरकार की खासकर आप क्या कहेंगे?
बार बार प्राइम मिनिस्टर कहा है कि युद्ध के माध्यम से कोई समस्या हल नहीं होगी, और साथ साथ सरकार का, भारत सरकार का एक स्ट्रांग स्टैंड है कि युद्ध के दौरान किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हानि नहीं होनी चाहिए
जी।
वो गैस का हो या कुछ का हो। इसलिए भारत ने देखा होगा, खंडन किया जब गल्फ क्षेत्र में कई देशों की जो अपनी फैसिलिटीज है, ऑयल फैसिलिटीज पे ईरान का ये गिरा था। साथ में सरकार ये भी कहा कि भाई कहीं भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जैसे कतार में हुआ था वहां भी जो नुकसान हो गया क्योंकि ड्रोन अटैक्स वजह से, सरकार ने कहा नहीं ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस पर सारा विश्व डिपेंडेंट है और जब युद्ध खत्म भी हो जाएगा फिर इन इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़े करने में बहुत समय लगेगा और बहुत पैसा भी खर्चा होगा। तो सरकार की कोशिश है और कूटनीति में ऐसा है कि जो करते हैं वो ज्यादा बताते नहीं है। प्रधानमंत्री लगातार सबके सारे जो गलते सबके साथ लगातार बातचीत चल रही है ताकि भारत को जो ऊर्जा की सोर्स लगातार मिलनी चाहिए, दूसरा जितना जल्दी हो ये युद्ध समाप्त होनी चाहिए।
शेखर जी, हमने बात की कूटनीति की, लेकिन अब आते हैं अपने देश में और हम आपसे और सभी श्रोताओं से भी बताना चाहेंगे कि इस वक्त एक ऐसा ये संकट का समय है जब देश में कई तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं। तो एक ऐसी अफवाह पिछले कुछ दिनों में फैली है, वो है कि देश में लॉकडाउन लगने वाला है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी इसका बहुत पुरजोर तरीके से खंडन किया। शेखर जी, आप श्रोताओं को क्या कहेंगे कि क्यों ऐसे कठिन समय में ऐसी अफवाहों को दरकिनार करना भी हम नागरिकों का बहुत बड़ा कर्तव्य बन जाता है? साथ ही ऐसे समय में कैसे पता करें कि सूचना सही है या फिर अफवाह? सूचना के कौन से ऐसे स्रोत हैं जिन पर लोगों को भरोसा करना चाहिए?
हमारे सोशल मीडिया में बड़ी कोशिश हो रही है, ऐसी ताकतें हैं जो भारत विरोधी ताकतें हैं, अंदर भी हैं बाहर भी हैं, वो चाहते हैं कि लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन हो जाए, पैनिक हो जाए, जो पैनिक की वजह से लोगों ने अपने सिलेंडर लेके पहुंच गए थे सब डीलर के पास। इतनी नॉर्मल स्थिति में लोग पहुंचेंगे तब भी डीलर सबको डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो टाइम पीरियड रखा गया कि आप ये करिए, नंबर वन। नंबर दो, इस वक्त ऐसी बातें कही जा रही है जो कोई कंपैरिजन नहीं है, जैसे लॉकडाउन की बात पिछले 48 घंटे में ये कई लोगों ने चला दी, उसमें दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई कुछ ऑपोजिशन नेता भी इस पे बड़े स्पेकुलेशन कर रहे हैं नहीं लॉकडाउन हो जाएगा। सरकार की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं है, सरकार कुछ ऐसा कुछ नहीं किया। और लॉकडाउन का मतलब क्या है, जब हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है और सरकार भी कॉन्फिडेंट है, हमारे पास पर्याप्त फ्यूल सप्लाई भी है, तो इस तरह की बातें पर क्यों विश्वास करना है? सरकार आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से बार बार लगातार क्लैरिफाई करती आई है, उन चीजों को ध्यान रखते हुए लोगों को भी समझना चाहिए।
शेखर जी, हम श्रोताओं से भी यही अपील करना चाहेंगे कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और आकाशवाणी सुनते रहें, क्योंकि हम जो भी यहाँ पर सूचना देते हैं बिल्कुल सही स्रोत से आती है और बिल्कुल सही सटीक सूचना होती है। आज स्पॉटलाइट कार्यक्रम में भी रात 9:15 पर हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। श्रोताओं, आप ये कार्यक्रम हमारा न्यूज ऑन AIR ऐप और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
नमस्कार।
सुर्खियों में